ice chamber के नीचे में टॉप की पीठ पर दो तीन तलाशी का पता चला था। चार अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। कौन सा खजाना बताया?
ज्ञान और योग।
ज्ञान और योग, ज्ञान माना जानकारी। किसकी? आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म की। और फिर योग किसके? ब्रह्म से, आत्मा से? नहीं, एक बात से लगन लगाना। लगन कहो, लगाव कहो, प्रीति कहो, याद कहो, ये खजाना है बहुत बड़ा जो बाप सिखाते हैं। और संग तोर एक संग जोर। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जाती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। ये कायदा है क्या? क्या कायदा बताया? याद से याद मिलती है। जो मेरे को याद करते हैं, मैं उन्हें याद करता हूँ। तो मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है उसका मतलब याद करते हैं। रावण में भी ज्ञान तो बहुत था, लेकिन प्रीति, लगन, परमात्मा के प्रति लगाव, वो नहीं। तो ज्ञान होना अलग चीज। रावण ने भी पहचान लिया था ये परमात्मा है। वो रावण कौन से युग में था? है त्रेता में तो नहीं
था,
द्वापर में था। द्वापर में तो राम और रावण की पहचान ही नहीं होती। ये सब शास्त्र में कहां की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। संगम युग में ही ये राम भी प्रत्यक्ष होता है तो रावण के भी दस से प्रत्यक्ष होते हैं। चित्र है तो जरूर चरित्रधारी भी होंगे। तो रावण का क्या चरित्र हुआ? जैसे ब्रह्मा के हाथ में जैसे शास्त्र दिखाए जाते हैं, बहुत ज्ञानी दिखाया जाता है, वैसे रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते, बहुत ज्ञानी दिखाया जाता है। फिर अंतर क्या है? विशेष अंतर क्या हुआ? एक धारणा करता है और दूसरा धारण नहीं करता। तकनी अलग और करनी अलग हो जाए। तो ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है उसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है और योग की डिपार्टमेंट अलग है। कोई ज्ञानी हो सकता है, ज्ञानकार हो सकता है, जानता सब कुछ है, लेकिन जानते हुए भी प्रीति परमात्मा से नहीं जोड़ सकता। अर्जुन गृहस्थी और भीष्म पितामह निवृत्ति मार्ग वाले दोनों जानने वाले थे परमात्मा को, फिर प्रीति किसकी जुटी? अर्जुन की प्रीति जुटी और भीष्म पितामह जानते हुए भी लगाव किसके लगाया? साइड किसके लिए? तन मन धन की सेवा किसके प्रति की? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ मन होगा। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उनकी कमी। योग से आत्मा तत्व प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगैर तत्व प्रधान बनना असंभव है, उसकी याद के बिना। झूठ खंड स्थापन करने वाला भी है तो सच खंड स्थापन करने वाला भी है। झूठ खंड स्थापन करने वाले को याद करने वाला वो भी झूठ ही बनेगा, और सत्य बाप को याद करने वाला सत्य ही बनेगा। योग से ही आत्मा तत्व प्रधान बन जाती है। किसके योग से? सत्य से या झूठ से? सत्य से योग लगाएंगे तो तत्व प्रधान बन जाएंगे। बुद्धि का ये हिसाब है कि जिसका संग करते हैं उसी का रंग लगता है। बच्चे ही सारे दिन में बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। इसका मतलब बच्चे सारा दिन किसको याद करते हैं? बाप को याद नहीं करते तो जरूर देहधारियों को याद करते। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप भी याद करते हैं। याद से याद मिलती है। क्या बात है? तो मतलब ही ये बात हो गई है, तो स्वार्थ की बात हो गई कि तुम हमको याद करोगे तो हम तुमको याद करेंगे, तुम हमसे प्रीति करोगे तो हम तुमसे प्रीति करेंगे। ऐसे दुनिया में भी चलता है, ईश्वर भी ऐसे ही करता है क्या? कि हम ईश्वर से प्यार करेंगे तो ईश्वर हमें प्यार करेगा, प्रीति करेगा, याद करेगा, नहीं तो याद नहीं करेगा। अच्छा, ईश्वर को याद करने की जरूरत है? ईश्वर बच्चों को याद करेगा या बच्चे ईश्वर को याद करेंगे? पाप का बोझा किसके ऊपर है? तो कौन किसको याद करेगा? बच्चे बाप को याद करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पापों का बोझा है। और शिव बाबा के ऊपर बोझा नहीं है? आपका तो बाप है, लेकिन याद भी किसी हिसाब से किया जाता है। कोई की याद क्यों आती है?
नहीं,
याद आती है तो जरूर कोई न कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है तो किसी की याद आती है, नहीं तो कोई की याद ऐसे नहीं आती। कहीं किसी से लगाव लग जाता है तो याद आती है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करता है वो साकार जन्मान के चक्र में आने वाली आत्मा है, और उसके साथ जिनके अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, जिन्होंने कीर्ति का हिसाब किताब जोड़ा है, पूर्व जन्म से ही वो आत्माएं तकदीर बना करके इस संगम युग में आई है, तो उनको याद आती है। जब उनको याद आती है तो परमात्मा जी से, परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जी से संग में प्रवेश किया हुआ है, वो भी उस कनेक्शन से कहा जाता है कि परमात्मा याद करता है। बाकी परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं, याद कौन करता है? तो स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, ये नियम बना हुआ है। प्रीति कब पैदा होती? बिंदु आत्मा से प्रीति पैदा नहीं होती, जिसे कहते हैं सहज याद, निरंतर याद। बिंदु को तो खींच के याद किया जा सकता है। हाँ, बिंदु रूप स्टेज वाला वो सहज ही आकर्षित करता है, वो तो जरूर कोई साकार ही होगा। जो निराकारी इससे जवाला होता है, जैसे और धर्म पिताएं, वो सब निराकारी से जवाले। महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखिए, क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखिए, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखिए। चित्र को देखने से ही पता चलता है कि ये निराकारी के लिए, क्योंकि बीज बाप होता है निराकार, तो वो धर्म पिताएं। लेकिन उन बापों का भी जो बाप बनकर इस शक्ति पर आता है, जिसको वो धर्म पिताएं भी याद करते हैं, क्राइस्ट भी उस गॉडफादर को याद करता है, वो गॉडफादर कितनी जो निराकारी स्टेज में होगा, और वही निराकारी स्टेज क्लैरिटी की स्टेज वो सबको आकर्षित करती है। लेकिन याद किसको करता है, आकर्षण किसको करता है, जो बाप को याद करते हैं उन्हें बाप याद करते हैं। बच्चे बाप को खींचते, ये भी बना बनाया खेल। जिसको अच्छी रीति समझना है कि कौन से बच्चे बाप को खींचते हैं और कब कब खींचते हैं, याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले भी जो उच्च पद पाते हैं उसका आधार भी याद है, उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं, वो कथित करते हैं, कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी चाहिए याद, इस बात में कि बाबा रहम करे और कृपा करे। पहले तो ये कहेंगे कौन, कृपा करो रहम करो, ये कौन बच्चे कहेंगे? जो सरेंडर्ड बुद्धि होंगे वो कहेंगे, या जो अहंकारी है जिन्होंने अपनी बुद्धि को सरेंडर ही नहीं किया वो कहेंगे कृपा करो रहम करो? अहंकारी कहेंगे, जो निरहंकारी होंगे वो भी वही कहेंगे कि बाबा रहम करो। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कच्ची चोरी करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करता हूं, तो याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन और याद से फिर याद मिलती है, जिससे हम हेल्दी बन जाते हैं। इसका मतलब ज्ञान से वेल्दी बनते हैं और याद से हेल्दी बनते हैं। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा हेल्दी बनती है। जो हेल्दी होता है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, अटैक करेगा भी तो उसका मुकाबला कर सकेगा। तो मन बुद्धि जिसकी सालिम होती है याद के बल से, उसके ऊपर भिन्न बाधाएं कोई असर माया की नहीं कर सकती। तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा हेल्दी बनती है, तो बाद में शरीर भी हेल्दी बनेगा, क्योंकि बीज हेल्दी बनेगा तो शरीर रूपी वृक्ष भी हेल्दी मिलेगा। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बनाए देते हैं याद के बल। इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बाबा में इतनी ताकत है, इतनी कशिश है कि जिस कथित के आधार पर बच्चों की मनबुद्धि को अपनी ओर आकर्षित करके सबकी मनबुद्धि एकाग्र कर देते हैं, उस एकाग्रता से वायुमंडल कैसे बनेगा? शुद्ध एकाग्र वायुमंडल बनेगा जिसमें किसी भी प्रकार की विचलती नहीं होगी, सब मन मनोभाव की स्टेज में हो जाएंगे। जो बाप का संकल्प हो वो बच्चों का संकल्प। तो कितनी ताकत है सारे विश्व को पवित्र बनाने की, याद है? इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ, इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बाबा में इतनी ताकत है, बाबा का वो चित्र बना हुआ है संसार में। ऐसे नहीं कहा गया ज्ञान के बल से विश्व की बात कही बनती है, विश्व का संगठन एक हो जाता है, धारणा के बल से विश्व का संगठन एक हो जाता है, विश्व की बात कही मिलती है नहीं, या सर्विस के बल से विश्व का संगठन एक हो जाता है, क्या कहीं है? याद के बल से। तो कौन सा ऐसा चित्र है संसार में, भक्ति मार्ग में, जिस चित्र में ये बात दिखाई गई है कि योग बल से विश्व की बात कही ले ली, जिसके लिए गायन है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये विश्वनाथ का टाइटल बाहुबल के आधार पर नहीं मिलता, सिर्फ एक योग बल है जिसके आधार पर ये विश्वनाथ का टाइटल मिला। तो ये ताकत हुई जो याद के बल से सारे विश्व को पतित से पावन बनाई गई, इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। आकर के मन बिंदु के लिए आने और जाने की बात है क्या? कि बिंदु आए आकर के पावन बनाए, बिंदु चला जाए तो हम पावन नहीं बनेंगे। ब्रह्मा के तन में आया तो पावन बनेंगे, ब्रह्मा के तन से चला गया तो आप पावन नहीं बनेंगे। सिर्फ बिंदु की बात हुई क्या? बिंदु है चैतन्य या जड़? बिंदु अगर आत्मा जो बिंदु है वो शरीर धारण न करे तो जड़ बत है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तभी चैतन्य कही जाती है। सत्य कब है? जब चैतन्य है। सत्य चित्त, चित्त माने चैतन्य, और फिर सत्य भी है चैतन्य भी है तो आनंद स्वरूप है। तो बुलाते हैं, बुलाते हैं का मतलब किस रूप में बुलाते हैं? रूप बदल कर आ जाए, बिंदु रूप में नहीं, किस रूप में आ जाए? साकार रूप में आ जा रहे, इस धरती पर आ जा रहे। ऊपर बैठने से काम नहीं चलेगा, ऊंची स्टेज में रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे हम साकार हैं, जैसे हमारी स्थिति है इस दुनिया में, ऐसी नीची स्थिति में तू भी आ गया। तू तो इस नीची दुनिया का, तू भी तो आकर के हिसाब किताब देख, क्योंकि समान का ही संबंध जुटता है, असमानता का संबंध जुटता नहीं, और जुटता है तो स्थायी नहीं रहता। एक बहुत साहूकार हो और एक बहुत गरीब हो, कंगाल हो, तो स्वभाव संस्कार से बहुत दिनों तक मेल हो नहीं सकता। तो बुलाते हैं बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रणियां मारते रहते हैं और समय व्यर्थ करते रहते हैं, क्या नहीं जानते? जो अज्ञानी है वो किस बात में अज्ञानी हो? वो नहीं समझते कि बाप आकर के पतितों को पावन बनाता है। बाप को आने की दरकार है साकार में, जब तक आएगा नहीं तो पतितों को पावन बना नहीं सकता। छंद का रंग जरूर चाहिए, द्वापर युग से कैसे गिरे देवता है, जाति जाति के धर्म पिताएं, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं, जिन्होंने ने कभी स्वर्ग देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में देवात्माएं आती गई और संघ का अनेकों का संघ का रंग लगने से देवात्मा जो शेष्टाचारी थी वो सब भ्रष्टाचारी बन गई। तो संघ का रंग साकार में लगा ना, नीचे के लिए। तो अब शेष्टाचारी बनने के लिए क्या किया जाए? अनेकों के संघ के रंग में आने से व्यभिचारी बनते बनते, इंद्रियां व्यभिचारी बनते बनते नीचे गिर गई। अब ऊपर उठने के लिए क्या करें? उल्टा कर दिया ना? क्या उल्टा करें? एक साकार का संग का रंग जब लगे है तो वो निराकार, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे सुप्रीम सोल भी निराकार है, पतितों को पावन बनाने वाला। लेकिन फिर संग का रंग कैसे लगेगा? कॉन्स्टेंट संग का रंग चाहिए या थोड़ा बहुत लग जाए तो उससे कम चल जाएगा? निरंतर चाहिए और सहज चाहिए या कठिन योग चाहिए? माँ बच्चे को याद करती है तो सहज याद करती है या खींच के याद करती है? वो सहज याद माँ को क्यों आती है? माँ कभी बच्चे से या पति से क्यों नहीं पूछती कि मैं बच्चे को क्यों याद कैसे याद करूं? पूछती है कभी? नहीं पूछती, क्योंकि संबंध प्रैक्टिकल में माने शरीर से, शरीर के साथ प्रैक्टिकल में संबंध जुटा हुआ है, इसलिए सहज याद आती है, निरंतर याद आती है। तो परमात्मा की याद सहज और निरंतर कैसे होगी? जब परमात्मा स्वयं जो गायन है, तुम संग खेलूं, तुम संग बैठूं, तुम संग खाऊं, तो ये गायन साकार का है या निराकार बिंदु का है? निराकार बिंदु कैसे बैठेगा? वो कैसे खाएगा? बिंदु तो अभोक्ता है। तो बताया कि वो तो ऐसे ही रणियां मारते रहते हैं, टाइम व्यस्त करते रहते हैं और बाप को जानते नहीं। कौन कौन? दुनिया वाले? वो तो दुनिया से तो हमारा कुछ लेना ही देना नहीं, क्योंकि पहले ही बाबा ने हमें बताया दिया इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम्हारा अपना छोटा सा संसार है। यानी पुरानी 500 करोड़ की दुनिया से तो हम पहले ही मर चुके। आप हुए मर गई दुनिया, हमारे लिए वो दुनिया काम की नहीं, जैसे खत्म खलास। हम जानते हैं वो तो खलास हुई पड़ी, जो बाप के नहीं बने वो सब खलास हुए पड़े हैं। अर्जुन ये सब मरे पड़े, तो वो दुनिया तुम्हारी पहले से ही खलास हो गई। लेकिन हमारी है छोटी सी दुनिया, कौन सी? ब्राह्मणों की दुनिया, जिन्होंने पवित्रता का विरुद्ध नंबर वार धारण किया है, पहला जन्म जिन्होंने बेसिक नॉलेज में ले लिया, पवित्रता के प्रति जिनकी चाहना है, पवित्र दुनिया के प्रति चाहना है, वही हमारी दुनिया है। तो आपको तो दुनिया की भी बात है कि उस दुनिया में भी कोई कोई अभी भी अज्ञानता में है, जो इस बात को नहीं जानते हैं, रणियां मारते रहते हैं, लेकिन पतित से पावन बन नहीं सकते इस रहस्य को न जानने के कारण। टाइम व्यस्त करते रहते हैं, बाप को नहीं जानते, नौदा भक्ति बल करते हैं, विश्व के शिव के मंदिर में जाकर काशी करवट खाते हैं, परंतु मिलता फिर भी कुछ नहीं। वहां काशी करवट में क्या होता है? गहराई में कुआ होता है, उस कुएं में जाकर के कूद जाते हैं। कूदने का मतलब क्या हुआ? छलांग लगा देना। कुएं में तो अंधेरा होगा या उजेला होगा? अंधेरा होता है। तो यहां भी अज्ञान अंधेरे में भरे पड़े हैं और परमात्मा बाप के ऊपर समझते हैं कि हम अर्पण हो गए, कूद जाते हैं, अपने को अर्पण कर देते हैं, बिना जाने ही, बिना पहचाने ही। किसके ऊपर? परमात्मा। परमात्मा को पहचानते हैं कि कुएं में बैठा हुआ है? परमात्मा अंधेरे में बैठा हुआ है? परमात्मा तो उजाला देने वाला है, जहां परमात्मा होगा वहां तो उजाला ही उजाला होगा, रोशनी ही रोशनी होगी, अंधकार का काम नहीं। तो भक्ति मार्ग में जो काशी करवट खाते हैं, अंधे कुएं में कूदते हैं, अंधेरे कुएं में, वो यादगार कहाँ की? ये भी संगम युग की यादगार। वहाँ भक्ति मार्ग में भी समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के सारे पाप खलास हो गए, लेकिन फिर दोबारा जन्म लेकर के पाप करने लग पड़ते हैं तीव्रता से, तो फायदा तो हुआ नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो इस दुनिया से मिल नहीं सकती। यहाँ भी ऐसे होता है, अज्ञानता के कारण समझते हैं कि हम परमात्मा बाप के ऊपर अर्पण हो गए, लेकिन वो पति का पावन बाप के ऊपर कोई अर्पण नहीं होते हैं अज्ञानता के कारण, फिर भी अंधेरे में कूदते हैं। मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी विकर्म बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों विकर्म बनना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि अंध श्रद्धा युक्त होकर के अर्पण हुए, अपने को समर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, गला कट जाता है। तो अपने को पुरानी दुनिया से मार तो दिया, लेकिन प्राप्ति फिर भी कुछ नहीं। फिर नए सिरे से पाप कर्म करना शुरू कर देते, 100 गुना, 1000 गुना और 1,00,000 गुना बोझा चढ़ता जाता है। क्यों चढ़ता है? ब्राह्मण बनने के बाद ये बोझा क्यों चढ़ता है, जब हम परमात्मा बाप के बच्चे बन चुके? क्योंकि प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप और पति से पावन को हम पहचान नहीं पाते। माया झट फंसा देती, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पति तो पावन बाप है, कोई मनुष्य गुरु पतितों को पावन बनाने वाला नहीं हो सकता। वहां तो भक्ति मार्ग में भी देवदास और देवदासियां होती थी, तो अर्पण हो जाती थी। वो सेवा किसकी करती थी? भगवान की सेवा करती थी क्या? सेवा तो फिर भी गुरुओं की होती थी। ऐसे ही वो शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ भी शूटिंग वही होती है। अर्पण होते हैं और सेवा किसकी करते हैं? देहधारी गुरु, वो देवदास और देवदासियां। इसलिए नाम ही रखा गया देवदास और देवदासियां, रामदास नहीं, रामदासियां नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? यानी देवता बनने वाली जो आत्माएं हैं, उन मनुष्य गुरुओं के ही अधीन बनती है जाकर, उनके दास दासी बनते हैं अर्पण होने के बाद। लेकिन अब तुम जान चुके हो पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही पाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। किसके तन से बोल रहा है ये बोलने वाला? कौन? परमात्मा शिव ज्योति बिंदु। क्या कहा? उन पर कुर्बान जाना है। जब ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है तो उन पर क्यों कहा, दूर क्यों कर दिया? किस पर कुर्बान जाना है, माने ब्रह्मा की तरफ इशारा क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा का पार्ट कोई पतितों को पावन बनाने वाला पार्ट नहीं होता। तो अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिवशंकर एक है, ये भी अज्ञान। अगर शिव शंकर एक हो तो इसका मतलब है कि शंकर ही भगवान हो गया, एक भगवान है, एक ईश्वर हो गया। और जो एक ईश्वर होगा वो याद में बैठेगा क्या? ईश्वर भी किसी की याद करेगा क्या? ईश्वर को याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। इससे साबित होता है कि जो याद करने वाला है वो नीचा है, और जिसको याद कर रहा है वो ऊंचा है। इसलिए शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। तो शिव शंकर एक है, ये भी अज्ञान है। ज्ञान क्या है? शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। वो आत्मा अलग पार्ट बजाती, भले शरीर एक ही है,
और शिव की आत्मा अलग पार्ट में जाती है। दोनों का पार्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों जब तक एक ही स्वरूप में एक ही व्यक्तित्व में व्यक्त नहीं होते तब तक कार्य भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं पतित पावन। एक शब्द क्या है पतित और एक शब्द क्या है पावन। शिव शंकर में शिव पहले और शंकर बाद में, और पतित पावन में
शंकर भी याद करता है। याद करता है उसका मतलब उससे भी ऊंचा कोई है, जो ऊंचा है वो ही पावन एवर प्योर है। तो दोनों को एक कहना ही अज्ञान का, इसको याद करना है। मतलब तन एक है लेकिन हम याद किसको करते हैं, किन को याद करते हैं, वही पति पावन है फिर भी दिक्कत। हाँ तो यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना मत मना भव, मत माना मेरे मना माना मन में, भव माना समझ। तू मेरे मन में समझ, मेरे कहने वाला कौन, शिव या शंकर, शंकर दूध पीने वाला और क्यों शिव अमृत देने वाला, उसके मन में समा जा, शिव के मन में समा जा। तो शिव का मन कौन है? कभी मुझे ने ये कहा कि तुम बच्चों को मास्टर शंकर बनना है, क्या कहा मास्टर जन्ना बनने का प्रचार करना, तो किसके मन में समाना है? शिव के भी तो तीन आ जाते हैं, मन बुद्धि और संस्कार। ये देखा मेरी बुद्धि में समा जा, क्या कहा मेरे मन में समा, जो बात का संकल्प तो बच्चे का संकल्प। तो मन कौन हुआ त्रिमूर्ति, ब्रह्मा हुआ मन, ब्रह्मा के सब संकल्पों से शक्ति नहीं देखती। ऐसे ही कहा कि शंकर के संकल्पों से शक्ति नहीं है, सागर मंत्र हुआ शंकर का काम अलग और दूसरे देवताओं का काम अलग और राक्षसों का काम अलग। तो धन्य तो शक्ति अपने अपने अलग अलग बते हुए, याद किसको करना, किसी को याद करना है, उसके मन में समा जाना है। यानी अपने संकल्पों को शिव के संकल्पों में, शिव संकल्पों में समा जाए। ये शिव संकल्प है कि मेरी जीवन की स्थापना हो जाए, नई दुनिया की जब स्थापना हो जाए तो पुरानी दुनिया बताएगी नष्ट हो जाएगी। इस संकल्प में समाने की दरकार नहीं है कि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए। क्या करना है, डिस्ट्रक्शन करने का कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन। हम एक बड़ी रेखा खींच करके दिखा दें, वो संगठन चैरिटी से यूनिटी बनाकर दिखा दें तो क्या होगा, जो इनचैरिटी है वो सतह ही नीति होकर के खड़ा हो जाएगी। मुझे याद करो कि तुम पवित्र बन जाओगे, तुम काम पर जीत पाते। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी बिघन डालेगी। तो क्या करना है, कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है? करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए। कोशिश माना मेहनत, और जहाँ लगाव लग जाता है चीज जुड़ जाती है वहाँ कोई कोशिश और मेहनत करने की दरकार नहीं पड़ती। क्या होता है पता ही कोशिश होती है क्योंकि लगाव लग गया। तो तुम जितना कोशिश करेंगे तो माया भी घंटा लेगी, क्यों भी घंटा लेगी। ये तुम आपा ही मेहनत कर रहे हैं। क्या हम ठीक से याद कर लेंगे? तो ठीक काम करने की कमी थी इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कहो याद। योग शब्द हटा दो, योग शब्द है हठ योगियों का और याद है, याद शब्द है गृहस्थी योगी। गृहस्थी जीवन में अनुभव तो होता है, बाप बच्चे को याद करता है तो कहता ही लगाव लगा पड़ा है हमें बाप से ही वर्षा मिले, कोई और से तो वर्षा मिलता नहीं। माँ को बच्चे से लगाव लगा पड़ा है, ये बच्चा ही बड़ा होकर मेरी परवरिश कर लिया। तो कोशिश होनी चाहिए, कोशिश शब्द शब्द भी न हो, कोशिश में लगे रहेंगे तो माया दिन लगे, क्योंकि समझती है बाप को याद करेंगे तो ये मुझे छोड़ देंगे। माया बेहन क्यों डालती है? माया बेहन ही सब डालती है, जबकि जो श्रीमत है उस श्रीमत को जो श्रीमत देने वाला है उसको न समझकर हम अपने तरीके मन मत से या मनुष्यों की मत से चलते हैं तो माया बेहन डालती है। श्रीमत पर चलने वाले को माया कभी बेहन डालनी चाहिए। तो क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, मित्र संबंधी धन आगे कुछ भी याद ना आए। एक कथा भी है, ये लाजिम से सब चीजें छुड़ाई देते। कौन सी लाजी है? लाजी कौन सी? ये शरीर का देहभान जो है, शरीर भी क्या है, लाठी है। इस मत को तुम छोड़ो। ये कथा कौन सी है? शरीर में मिचवा दिया, बेच दिया, किसकी कथा है? सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र की कथा कहो, सत्य नारायण की कथा कहो, मातृ की, सब चीजें अर्पण करनी पड़े, छुड़ाई देती है, परंतु शरीर को भी याद है। ये कभी नहीं कहते क्या, क्या नहीं कहते? बाप कहते हैं ये शरीर ही पुराना है, तो पुराने को याद करें क्या? बच्ची माई की बातें छोड़ दी, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है वो सब काम में लगा दो, तब याद टिकेगी, नहीं तो टिकेगी नहीं। याद कब टिकेगी? मन, धन, समय, संपर्क, संबंध सब अर्पण कर, जितना अर्पण में होंगे उतना दर्पण पावरफुल बनेगा और उसमें अपने को देख सकेंगे कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा, याद कितने का सही सही नहीं है कि मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब सब तेरे काम में लगे। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, कभी भी याद नहीं, नंगे आए हैं नंगे जाए। ये बाप बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? कौन सी बात पढ़ाते हैं? कि नंगे आए हो और नंगे वापस जाना है, ये शरीर वापस लेकर के शरीर की कपड़ा भी वापस लेकर के नहीं जाना है, ये भी छोड़ो यार, वो भी छोड़वा दीजिए, इनको कोई तमन्ना नहीं है। शुरुआत क्यों? इनको तमन्ना नहीं, कभी गलत फहमी हो जाए कि बाबा पीने के लिए हमारा देवान जुड़वाए रहे,
तन अर्पण कराए नहीं, चाहे तन अपना हो चाहे बाल बच्चों का हो, बीवी बाल बच्चे को सब तन किसकी है, तन भी किसकी है, माँ बाप की बच्ची है वो तन नहीं है, बच्चे बच्चे भी तो माँ बाप के ही तन है ना, लेकिन सब कुछ छोड़वा देते हैं किसके लिए, बिंदु तो लेता नहीं, लेता कौन, उनसे सेवा कौन लेगा, जितने कार्य करते हैं उसी के द्वारा तो कार्य में लगाया जाएगा, तो कोई कहे तो इनको तमन्ना होगी, बाबा का ये प्रिय बच्चा है इसलिए बाबा सब कुछ इन्हीं के लिए सरेंडर कराते हैं, हमारा तन मन धन बाबा वो कहते हैं कि इनको कोई तमन्ना नहीं, इस बात की कि कोई और का तन मन धन मेरे को मिल जाए, ये तो सर्विस करते हैं, कौन सर्विस करते हैं, जिसके तन में प्रवेश होता हूँ, ये तो सेवाधारी है, बात में ही तो ज्ञान है ना, इस बात का ये बाप और बच्चे का खेल है, बाप कौन और बच्चा कौन, जीव ज्योति बिंदु बाप और प्रजा के संबंध बच्चा, ये इकट्ठा खेल है, बच्चे भी याद करते हैं फिर बाप बैठता तो लाइट देते हैं, इसमें बैठता तो लाइट देते हैं, साकार में बैठ सुप्रीम कोर्ट बाप को सच लाइट देते हैं, तो बहुत खींचते हैं तो बाबा बैठ लाइट देते हैं, बहुत खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को लाइट, कब याद करते जब बहुत नहीं खींचते हैं कोई बच्चे, तो ये बाबा कौन है, साकार बाबा की बात है, याद की याद किसी ने की तो साकार की याद की याद लिखती है, क्योंकि साकार के ही थ्रू असली याद होती है, तो जो जब बच्चे बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं, माना साकार किसको याद करेगा, फिर मेरा कार बिंदु को याद करेगा, कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद मिट जाती है, ये भूलना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है, तो पढ़ाई की आयु नहीं बढ़ेगी, आयु किससे बढ़ेगी, दिया करंट से आयु बढ़ती है, अगर हम भी बन जाती दुनिया में किसकी आयु सवा सौ डेढ़ सौ वर्ष भी होती, जरूर हेल्दी होंगे, बच्ची भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है नुकसान नहीं, जो भक्ति भी नहीं करते उनके मेहनत भी अच्छी नहीं है, भूल भी नाचते हैं तो उनकी मेहनत अच्छी नहीं होती, भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, भक्तों की भी मेहनत, मनुष्यों की ये मालूम नहीं है कि भक्ति कम क्यों, ज्ञान का तो पता ही नहीं पड़ता, भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, तो जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल याद करो, भक्ति कब छूटे जब ज्ञान का प्रभाव पड़े, इससे प्रभावित हो ज्ञान, क्योंकि मनुष्य से प्रभावित हुआ जाता है कि कोई अदृश्य चीज से प्रभावित हुआ जाता है, प्रभावित तो गुण भी तो किसी साकार के ही होंगे ना, कोई व्यक्ति के ही गुण होंगे ना, तो जिससे प्रभावित हुआ जाता है हम उसी की प्रजा हुए, प्रभावित मन प्रजा, तो जितना जितना ज्ञान का प्रभाव होता जाता है माना ज्ञान सागर का प्रभाव हमारे ऊपर जितना जितना पड़ता जाएगा तो फिर भक्ति बिल्कुल खो जाएगी, क्योंकि भक्ति आती है रावण से अंधश्रद्धान विश्वास, और ज्ञान आता है एक बाप से, एक दो में दुश्मन है ज्ञान और भक्ति। सुख दुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। भक्ति से होता है दुख और ज्ञान से होता है सुख। ज्ञान का अगर बाप का अगर हमने बच्चा नहीं लिया इसी जीवन में तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ज्ञान से होनी चाहिए सदगति और अज्ञान से होती है दुर्गति। पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति और दुर्गति की बात है, कैसे पता चले? मन बुद्धि रूपी आत्मा जब ज्ञान धारण कर लेती है परमात्मा बाप ज्ञान सागर से डायरेक्ट वेदांत रूप से नहीं, तो उसकी निशानी क्या होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा मन चिंतन मंथन में मस्त रहेगी, साकार दुनिया को भूल जाएगी, देह और देह के संबंधों को भूल रहेगी। ये हुई सदगति मन बुद्धि। और जब अज्ञान होता है देहधारी गुरुओं से उनकी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है तब क्या होता है? तो मन चिंतन मंथन क्या कर सकती, क्या चलेगा? बोल धर्म धर्म देह और देह के संबंध में किया पुरानी दुनिया किया तो सदगति हुई या दुर्गति हुई? दुर्गति हुई। तो यहाँ प्रैक्टिकल में ये अनुभव करना है कि कौन सा ज्ञान परम पिता परमात्मा से हमको डायरेक्ट परमात्मा से मिला है जिससे हमारी मन बुद्धि चलायमान हो जाए, गतिशील हो जाए। गति चाहिए या दुर्गति चाहिए? गति चाहिए। तो पहले शरीर की गति सदगति होगी कि पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज की गति संगति होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा की गति संगति हो रही है इसका मतलब है कि हम सदगति की ओर है। अब हमारा दुर्गति का रास्ता समाप्त हो रहा है। तो भक्ति में होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। कोई कितना भी बहकाने की कोशिश करे क्या ज्यादा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। तो बहकाने नहीं जाने, ये पक्की पहचान है गति और सदगति की दुर्गति की। मन से कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं। सुख कौन देता है? सुख भगवान देता है। ज्ञान देकर के भगवान सुख देता है। ऐसी बुद्धि में पराकाष्ठा ज्ञान की हो जाए कि इस दुनिया के कितने भी सुखों के पहाड़ गए कयामत की समय, लेकिन हमारे ऊपर कोई शिकत न आने पाए। हम अपनी आत्मा सुख में उस चीज में नहीं, दुखों को दुख समझे ही नहीं, अनुभव ही नहीं बने, ऐसी परमात्मा की सिर्फ छाया का हम अनुभव करते हैं। चाहता हूँ तो कहेंगे सुख हुआ। इस संगम में शरीर के रहते हुए ही ऐसी गति और सदगति का अनुभव करना। तो जो कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं, भगवान ज्ञान से सुख देगा या दुख देगा? देवदानी मनुष्य गुरु मन माया रावण जो हमको दुख देते हैं और हम भगवान के ऊपर तोहमत लगाते हैं कि भगवान हमको दुख देता है, वो हमारी बुद्धि को मोड़ देते हैं। क्या उल्टा सिखाई देते, किसी में बैठा देते? ये जो दुख तुमको ज्ञान में आने के बाद मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? नहीं वो ये किसी में बैठाते हो कि तुम किस ज्ञान में चल रहे हो कि ये तुम्हारी दुर्गति हो रही है? ये एडवांस एनालिसिस में जाने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये तो भक्ति मार्ग वाले लोग कहते हैं कि शंकर का जो भगत बनता है वो शमशान घाट वासी हो जाता है। बात कहते हैं तन मन धन सब कुछ क्या करो चाहना करो, तो शमशान घाट में जब आत्मा पहुंचती है तो उसका तन मन धन समय संपर्क संबंधी रह जाते हैं क्या? नहीं। तो मेरे को तुम सब कुछ अर्पण करोगे तो मैं सीरी का दहन से लेकर के तुम्हारे लिए आया हुआ, मन हथेली पर लेकर के आया हुआ, अभी दो अभी अभी दो, एक हाथ से देता हूँ दूसरे हाथ से लेता हूँ।
तो वो कहते हैं पहलवानी इन शब्द को देता है, ये उनसे माया रावण कहलवाता है, सुख दुख भगवान ही देता है, भगवान तो सुख ही देता है और सुख को हरण करने वाला। जब सुख दुख भगवान ही देता है फिर उनको गर्भवा भी कह देती, सुख और दुख अलग चीज है, ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर को दूसरा लेती, ये तुम भी जानते हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि सती गुण तुम देवी अभिमानी रहते हो, ये तो अब बाप सिखलाते, ऐसी देवी अभिमानी बने, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना, बात वही पवित्र सुखदान, सुख में कोई याद नहीं करते, याद कब आती है, दुख में याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबर वन जानते हो, ये जो पॉइंट लिखते हैं वो भी भाषण की तरह रिलाइज करने के लिए लिखते, डॉक्टर बकरी भी पॉइंट नोट करते हैं, इसलिए नोट करते हैं, इसलिए नोट करते हैं कि दूसरों की सेवा करनी। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो उसे रिलाइज भी करना चाहिए, भाषण करने के लिए इसलिए तो है बाबा की प्रयोगता। इनको अर्जुन रथ कहते, बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे, ज्यादा ये भी बाप की पहचान है क्या, ये बाप जिसमें प्रवेश होकर के सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा उसकी पहचान क्या होगी, कि जिसमें प्रवेश करके सुनाएगा वो आत्मा स्वयं भी, वो देहधारी स्वयं भी सुनेगा, और भूत प्रेत या भूत आत्मा प्रवेश करेगी तो क्या अंतर होगा, कि जितने प्रवेश करेगी वो आत्मा सुन नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य आत्मा उसको सूक्ष्म शरीर होता है जिसका दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से वो आत्मा गुम हो जाती, और सुप्रीम कोर्ट को सूक्ष्म शरीर नहीं होता, इसलिए कोई दबाव नहीं पड़ता, हल्का फुल्का चोरी रहता है, इसलिए परमात्मा जिस कम में आता है वो आत्मा भी चलती है। वो पॉइंट न सुनाते तो मुझे क्या पता, जो तुमको समझाऊं कब समझाते हैं, समय में बाप प्रवेश करता है बोली से समझाता है तो कब समझाता है, जबकि उसको भी पता पड़ता है तो समझाता है, जैसे बुढ़िया राजी में आत्मा प्रवेश करती है तो जब प्रवेश करती है तो जो कुछ उसने सुनाया वो गुजार जाती समझा सकती है सुना सकती है, जब तक दोबारा पढ़े नहीं या कैसे काम सुन नहीं तब तक हमको पता नहीं पता सकता। बात कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा और विष्णु का पिता भी ब्रह्मा है, अंत का जन्म पहले है तो जरूर बच्चे भी हैं, तुम बच्चे हो ना, तुम राजा ही निकलते हो तो नंबर वन, जितनी याद करते हैं धारणा करते हैं ऐसा पड़ता है। बात कहते हैं बुझे से बुझे बातें सुनाता हूँ, ये भी पहचान किसकी, बाप के पास की परमात्मा पास की ये भी पहचान है क्या, कि जब जब सुनाएगा तो नित्य मिले कुछ न कुछ नया जरूर सुनाएंगे, शास्त्र में क्या होता है बोल पुराने में पढ़कर के जो कुछ सुनाते हैं गुरु लोग वो क्या सुनाएंगे, बोल पुरानी पुरानी बातें सुनाएंगे, नया कुछ नहीं सुनाएंगे, और बाप भूल से भूल और नई से नई बातें सुनाते हैं, तुम नोट करो उस नवीनता को, तो नोट करो तुम नई पॉइंट नोट करो
पुरानी काम में नहीं आएगी। बात होने के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट अगर समझाता तो बुद्धि में ठीक बैठ जाएगी। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, पॉइंट नंबर वाले हो, सबसे अच्छी महारथी कौन? बच्चे बाबा की बात अलग है, ये बाप दादा दोनों ही अच्छे हैं। मम्मा सबसे अच्छा करवा दीजिए। बच्चे का टाइम करते हो समझो मम्मा का। कहा जरूरी होता था तो बाबा जी जरूर करके आता था। कितने करे करके आता था? आदि माता की बात बताए बताई। कोई सरस्वती ओमरा दे उसमें प्रवेशता की बात नहीं, क्योंकि तो बाप आदि रकम में भी प्रवेश करते। सरस्वती तो मध्य में आई और मध्य में चली गई, उसे आदि रकम नहीं चाहिए। तो कहा जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके आता था। ये सब समझने की बात है। अपूर्ण मम्मा कौन और संपूर्ण संपूर्ण मम्मा कौन? अपूर्ण मम्मा तो सामने थी और संपूर्ण मम्मा उसका साक्षात्कार होता है। तो पढ़ाई पुस्तक के समय होती है, सारा दिन से धंधा आदि करते हैं, विकास सागर मंथन करने के लिए पुस्तक चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट नहीं है, तुम्हारा भी कोई अच्छी सर्विस करने वाला है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद कर। सर्विस देने का तरीका क्या बताया? पहले कौन याद आएगा? कोई आत्मा को करंट दो तो बस बिंदु को याद करने लगो तो बिंदु बिंदु सब आत्मा एक व्यक्ति कैसे किसी को कैसे पता चलेगा? उस आत्मा विशेष को कैसे करंट मिलेगी जब उसके साकार स्वरूप को याद करेगी? तो ये युक्ति लगनी है। सब केवल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी, बाप को याद करना है फिर कुछ को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ होने की आत्मा को भी याद करनी है। तो ये जैसे सबसे लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सोचे एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो, दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया सभी लोग कर जितना बाप को याद करेंगे उतना कर। सारा दिन बाप की शक्ति से बनी रहे क्या तरीका बताया? अमृत बेले जितना याद कर रहे हैं उतना सारा दिन अवस्था बन गई। एक हद का अमृत बेला भी है और एक बेहद का अमृत बेला भी। बेहद का अमृत बेला कैसे पता चले? कब हुआ बेहद का अमृत बेला? संगमी देवी बेहद का अमृत बेला भी है, बेहद की अर्धरात्रि भी है। जब कृष्ण जन्म होता है तो कहो कौन सा बेला कही जाती है, कौन सी देवी बेला कही जाएगी? अमृत बेला कही जाएगी, क्योंकि बच्चे का जन्म बाद में और बाप का जन्म पहले। तो अर्धरात्रि खाने घोर अंधकारी की जाती है, जिसमें 500 करोड़ की मनुष्य आत्मा तो अंधकार में पड़ी हुई होती ही है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब घोर अंधकार में पड़ जाते। उस समय बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, लेकिन उस समय सिर्फ विदेशी ही बाप को पहचानते हैं, स्वदेशी बाप को नहीं पहचानते। वो विदेशी ही पहचान कर बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो स्वयं की स्थिति में जरूर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ है तो जरूर बाप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जयंती साकार की मनाई जाती है। निराकार की साकार की जयंती होगी तो साकार में बाप प्रत्यक्ष होता है विदेशियों के सामने। क्या बाहरी रीति से बाहरी दुनिया की जो विदेशी है उनके सामने पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा, या जो दुनिया की रीति से विदेशी है उनके सामने प्रत्यक्ष होगा? जो बाप के बच्चे हैं 108 ज्ञानी तू आत्मा है वही पहले बाप को पहचानते, उनमें भी जो विदेशी बीज है वो पहले बाप को पहचानते। तो जो बाप को पहचानते हैं
उस समय अर्धरात्रि में, तो उसकी यादगार विदेशियों में जो दिन की शुरुआत है वो कै बजे से मानी जाती है? रात्रि के 12 बजे से दिन पर पड़ जाता है, नया दिन शुरू होता है। और भारतवासियों का नया दिन जब सूर्य निकलता है तो नए दिन की शुरुआत मानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतवासियों का अमृत वेला रात्रि के 12 बजे से नहीं होता। ऐसे नहीं कि रात्रि के 12 बजे से अमृत वेला समझ करके हम उठ करके बैठ जाएं और फिर बाद में सो जाएं, जैसे मुर्गा करता है, दूसरों को जगा दिया और खुद सो गए, तो फायदा नहीं होगा, वो नशा सारा उड़ जाएगा। सारा दिन याद की कशिश कब होगी? जब अमृत वेले हम एक बार जगे तो जब तक सूर्य उदय न हो जाए तब तक हमारा एक जैसी याद हो। ऐसे नहीं आधे सोते आधे जागते रहे या सो जाए। तो यहाँ अमृत वेला बेहद का भी है। कौन सा? 76 बेहद का अमृत वेला रात्रि के 12 बजे वाला विदेशियों का हुआ। स्वदेशियों का कौन सा हुआ? जब कृष्ण बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, तो वो पीरियड हुआ द्वापर के संगम युग में, द्वापर की।